ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. आज दोपहर में जो मंदिर में क्लास हुआ, आप लोग सभी थे? श्री प्रभुपाद इस भागवत में जिस प्रकार समझाते हैं, रामचंद्र जी की ऐसे कर्तव्य परायणता उनकी अंतरंग लीला के आधार पर है. उनके आत्म माया से ये सब संभव, वो थोड़ा पता चला. रामचंद्र भगवान के मनुष्य जैसे कर्तव्य दिखाई देते हैं, फिर भी वो मनुष्य के कर्तव्य नहीं है. अमानुषी और कपट मानुष रूपम, यानी कि भगवान सीधे ढंग से यदि हमें समझाते हैं तो हम सीधे ढंग से अपनाने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग टेढ़े हैं. हमारी समझ शक्ति सिर्फ सत्व रज और तमो गुण में आवृत अपना मन बुद्धि और अहंकार द्वारा प्राप्त होती है. यानी कि भौतिक बुद्धि से हम जिस ढंग से अपना जीवन बिता रहे हैं, उस ढंग से हम रामचंद्र जी के कार्यकलापों को समझ नहीं पाएंगे. क्यों? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्तियो तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति श्री अर्जुन. भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है. दिव्य यानी आध्यात्मिक, वो भौतिक सत्व रज और तमोगुण से परे होते हैं. आध्यात्मिक गुण सत चित और आनंदमय होता है. ये तीन गुण द्वारा भगवान का प्रभाव भी व्याप्त है, भगवान का व्यक्तित्व भी व्याप्त है, और भगवान की क्रिया लीलाएं भी व्याप्त है. भगवान के इन्फ्लुएंस आध्यात्मिक होती है. भगवान के इन्फ्लुएंस के बजाय जो उनका व्यक्तित्व है, यानी कि पर्सनालिटी है, वो भी आध्यात्मिक है. और इसीलिए भगवान के कार्यकलाप भी दिव्य या आध्यात्मिक कहलाता है. आध्यात्मिकता के तीन गुण है. सत मीन्स परमानेंट, टोटल, इटर्नल. चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेजबिलिटी और आनंदमय होती है. इसमें दुख नहीं होता. जो हम ना समझ होकर भौतिक गुणों से यदि समझे सत्व रज तमो गुण, तो दुख होता है. जैसे कि आज सुना सीता को फिर से वनवास दे दिया, क्योंकि एक किसी मामूली आदमी ने कह दिया कि तू कलंकिनी है, अपनी औरत को कहा. क्यों? क्योंकि वो पराये घर गई थी. इसीलिए उसका पति कह रहा है कि रामचंद्र जी स्त्री भक्त हो सकते हैं. वो अपनी पत्नी सीता को पराये घर से उठा के लाए और फिर रख दिया. कहां रखोगे? नहीं, ठीक है, यहां में तो टेबल रखना पड़ेगा. देखो, लेकिन भगवान ऐसी मामूली आलोचना से या कोई कमेंट करता है, उसे भयभीत हो जाते हैं. ऐसी बात आई, भगवान तो कभी भयभीत नहीं होते. भगवान को कोई डरा सकता है? कोई नहीं डरा सकता.
तो एक मामूलिया आदमी की ऐसी कमेंट उसे डरा गई क्या कि सीता का त्याग कर दिया कि जाओ सीता ये लोग बुरा बोल रहे हैं। लोग समाज में कुछ यदि गलत बातें होती हैं किसी के लिए तो क्या उसे भक्ति छोड़ देनी चाहिए?
जी नहीं।
क्यों? समाज तो बुरा कहता, वो समाज में रह नहीं पाएगा, आलोचना करता रहेगा, उसे देखकर उसे जलते होंगे हैं? और अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, अनप सनप बताते हैं। नहीं, जो परम सत्य की राह पर हैं, जो परम सत्य स्वयं प्रकट होकर आए हैं, तो उनसे किसी से डरने की बात नहीं। लेकिन रामचंद्र जी स्वयं परम सत्य की स्थापना के लिए आए हैं। परम सत्य की स्थापना वो भगवान का निजी गुण है, उसे धर्म कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। हम कल भगवान के बारे में, भगवान को जानने के लिए हमारे जो जो प्रयत्न है, जो हम चार पुरुषार्थों के पीछे पड़े हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ क्या बात है? शब्द तो भारी लगता है। पुरुष याने पुरुष याने नो पुरुष याने एंजॉयिंग स्पिरिट। हम सभी आनंद के लिए आए हैं, तो हमारी आत्मा जो स्पिरिट होती है वो हमेशा आनंद को ढूंढती है, एंजॉयिंग स्पिरिट। लेकिन ये स्पिरिट आनंद प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ यानी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम मेहनत व्यवस्थित रूप से करें जिसके द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति हो, तो उसमें चार पुरुषार्थ आए। पहले धर्म यानी कि धार्मिकता, धर्म के जो नियमों हैं उसका पालन करना, अर्थ और काम जिसमें हमें ये नियमों के अनुसार यदि हम पालन करते अपने जीवन निर्वाह के लिए अर्थ कमाएंगे और अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करेंगे तो अर्थ काम कहलाता है। और ये सब खत्म करके मुक्ति पाना है, क्योंकि आए हैं इच्छा पूर्ण करने के लिए, इसलिए हमने मनुष्य जन्म का शरीर मिला है और मौका मिलता है, सही। तो मोक्ष क्यों प्राप्त करना है? एक तरफ हम आनंद के लिए आए हैं और दूसरा कौन सा आनंद है ढूंढना है? यदि आनंद के लिए ढूंढना है तो धर्म की क्या आवश्यकता थी? तो लेकिन चार पुरुषार्थ दिए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ दिए गए हैं हमें कि हम उसे नियमित फॉलो करके, उसका पालन करके हम अपनी जो चरम सिद्धि है यानी कि जिसके लिए हम तलस रहे वो पाने के लिए हमें सफल बना। यदि ये बताए हुए मार्ग के अनुसार जो नहीं चलता, जिसके जीवन में न तो धर्म है, सिर्फ अर्थ काम के लिए जीता रहता है, तो वो तो पशु कहलाता है। उसको पशु को न मोक्ष की परवाह होती है, न धर्म की परवाह होती है। अर्थ काम, अर्थ यानी मेहनत करना, कमाई करना। बड़े बड़े शेर इत्यादि भी कितने ताकतवान क्यों न हो, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से कोई चीज प्राप्त होती है, मुफ्त में कोई मिलता है, कुछ नहीं। उसके लिए तो मेहनत, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ते कार्याणि मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यम उद्यम यानी मेहनत करना, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होता है क्या, कार्याणि सर्व मनोरथ, कार्यों की सिद्धि जिसके द्वारा हम अपने मनोरथ प्राप्त करना चाहते हैं। मनोरथ मन में जो कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ता है। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, सिर्फ मेहनत से ही सिद्धि मिलती है। कार्याणि सर्व मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुख में अपने आप थोड़े हिरण बैठ जाता है, उसके उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, शिकार करना पड़ता है। तो पशुओं को भी अर्थ काम के लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है और मनुष्यों को भी अर्थ काम के लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है। फर्क क्या पड़ा, जिसके जीवन में धर्म की आवश्यकता नहीं, न तो मोक्ष का कोई ख्याल है, ये तो पशु जीवन है ना, उनको उनके लिए दो ही पुरुषार्थ बताए गए हैं। लेकिन धर्म और मोक्ष, धार्मिकता यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना, जिसके द्वारा हम प्रशिक्षित होते हैं, अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और बिना शक्ति का व्यय किए, यानी कि हम वेस्टेज न करें अपनी शक्तियों का, क्योंकि एक जीवन छोटा है। यदि हम गधे जैसी मेहनत करके थोड़ा फल पाते हैं तो उसमें फायदा क्या, जितना आवश्यक है उतना करो और तुरंत फायदा पाओ, ये तो अकलमंदी है ना, सही ना। तो ये धार्मिकता के रूल्स और रेगुलेशंस सिखाते हैं कि ऐसे करने से आपका फायदा जल्दी होगा, देवताओं की पूजा करो आपको जल्दी फायदा होगा, लेकिन वो तो धार्मिकता का रूल्स एंड रेगुलेशन से। लेकिन मोक्ष के लिए अर्थ काम करने के बाद अब छोड़ने की तैयारी, अर्थ भी छोड़ना पड़ेगा और काम भी छोड़ना पड़ेगा, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, यानी कि मुक्ति। अब हम सब इच्छा पूर्ण कर ली, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापे में अभी देखो जानबूझकर हम पर परेशानी आ रही है, बीमारी आ रही है और हम शरीर से क्षीण होते हैं, इनवेलिड बनते हैं, तो मोक्ष धर्म का पुरुषार्थ बाकी रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो धार्मिकता का शिक्षण सिर्फ हमें अर्थ और काम के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है, तो वो शिक्षण नहीं है। उसको तो त्याग करना पड़ता है। ये धार्मिकता का रूल्स एंड रेगुलेशंस खत्म करो, भगवान कहते हैं कि तुम बेवकूफ बन रहे हो। थोड़ा सा धर्म का अनुशासन किया लेकिन अर्थ काम में ही सारा जीवन बिताया, तो मोक्ष के लिए हमारे पास कोई मौका नहीं, कोई उपाय नहीं। हमें परेशानी आती है, हम कंफ्यूज रहते हैं कि मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान ने आदेश दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन का त्याग करके आप मेरे अकेले की शरण में आ जाओ। सही। तो मनुष्य जीवन में भगवान अकेले की शरण प्राप्त करना सारा धर्म का निचोड़ बताया। द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन और फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस इज सिंपली टू सरेंडर टू कृष्णा। सो व्हाई नॉट टू सरेंडर फर्स्ट, देन गो थ्रू इनडायरेक्ट वेज। लेकिन जहां तक हमारी इच्छाएं अपने हृदय में अग्नि की तरह जलती होगी तो धर्म अर्थ का मोक्ष के मार्ग पर जाना ही पड़ेगा। जो अपने आप को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो भगवान का सीधा वचन लेता है, क्योंकि वो परम सत्य है, भगवान परम सत्य की मूर्ति है। is personified supreme absolute truth, personality of Godhead कहते personified. तो भगवान रामचंद्र जब आए तो उनके दिव्य कार्यकलाप मनुष्यों को ये सीधा धार्मिकता अर्थ काम और मोक्ष के मार्गों से ऊपर उठाकर सीधे अपनी शरणागत बनाने का है. इसीलिए वो दिव्य कार्यकलापे करते हैं. और ऐसे परम सत्य साक्षात होते यदि कोई गलत बोलता है तब परम सत्य सोच रहे हैं कि अब ये मनुष्य फिर से मूर्खता कर रहा है, चलो हमने अपना धर्म स्थापित कर दिया, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो स्वीकारेंगे, बाकी बेवकूफों को रगड़ होने दो, हम चलते हैं, हमारा काम खत्म हुआ. जीत एक बार हुई तो जीत हो गई और रूल्स चालू हो गया. इसमें दो चार खटपटी होते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं पीछे पीछे, और भगवान के कहे चल तेरी पॉलिटिक्स का मैं फायदा उठाता हूं, मैं बाय बाय कर लेता हूं अभी. इसलिए भगवान अपनी लीला अपनी आत्म माया द्वारा फिर से वाइंड अप करते आए हैं आत्म माया से, संभवामी आत्म माया, जाते हैं आत्म माया को वाइंड अप करके, उसके माध्यम से ही जाते हैं. इसीलिए सामान्य आदमी यदि कहे कि ओ देखो अभी भगवान मर गए, तू मरा है इसलिए मर्त्य बुद्धि कहलाता है. असूय ईर्ष्यालु लोग ही मर्त्य बुद्धि वाले होते हैं. इसीलिए ये एक सामान्य आदमी अपनी औरत से उल्टा कहकर डांट मारता निकाल देता है और अपने आप को रामचंद्र जी से भी बड़े अहंकार स्वभाव में लाता. हे रामचंद्र जी, वो सीता को रखते होंगे अपने घर में, वो तो स्त्री भक्त है ना, स्त्री अनुरक्त है. देखो रावण उठाया गया और पागल की तरह दौड़ते रहे पत्नी को ढूंढने के लिए. हम नहीं है, उठाया गया सो उठाया गया, जा निकल दूसरी आएगी, ऐसे करते हैं. तो स्त्री अनुरक्त की दशा नहीं नहीं, ये भगवान की अंतरंग स्थिति होती है. भगवान की शक्ति से यदि कोई बिछड़ाने का प्रयत्न करता है तो भगवान उसके प्रेम में अति और आनंद पाते हैं. विरह में आनंद का जो हमें अनुभव करना है, इसीलिए ये भक्ति दी जाती है. भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने विरह में आनंद की पराकाष्ठा यानी क्लाइमैक्स, द हाईएस्ट एप्रिशिएशन ऑफ लव इज ओनली इन सेपरेशन. इसलिए मर्त्य बुद्धि छोड़नी पड़ेगी. मर्त्य बुद्धि यानी कि भगवान की ईर्ष्यालु वाली बुद्धि, जो हमें मरने के लिए ही आशीर्वाद देती है, ऐसी बुद्धि मर्त्य बुद्धि कहलाती. मरो यहां से, टलो, सारा जिया बेकार हो गया. तो रामचंद्र जी के ये दिव्य कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी समझा सकते हैं, ये पाठ करने से समझ नहीं आती. तो हम इन चीज को ज्यादा स्पष्ट करते हैं. कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास दे दिया. फिर से वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसको आश्रय मिला, वहां उसने जुड़वे लव और कुश का जन्म दिया. और अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि देखरेख में छोड़ दिया तत्पश्चात भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वो पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। सीता देवी के द्वारा पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेमवश अपने शोक को रोक न सके। कोई कहेगा वो देखो पत्नी के विरह में मर रहा है, नहीं नहीं, सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने का समाचार से उत्पन्न भगवान राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी विरह भाव होते हैं, किंतु ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग जनित शोक तो ब्रह्म में भी पाया जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भावों को आनंदमय माना जाता है। ऐसा भाव तस्य प्रेमावश्य तत्स्वभाव का लक्षण माना जाता है और यह लादिनी शक्ति के प्रभाव में रहता है। भगवान की लादिनी शक्ति की इन्फ्लुएंस है। लादिनी शक्ति के प्रभाव में रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंबित हैं, इसलिए काम चलाव दिखाई देते हैं। यानी कि दो चार दिन रोया धोया, बाद में फिर विषय तृप्ति के लिए चढ़ जाएगा। जबकि आध्यात्मिक जगत में ये विरह भाव प्रेम की गहराई बताता है और प्रेम इतना गहरा बन जाता है कि कभी अपनी शक्ति से वियोग के बजाय पूर्ण आनंद प्राप्त करता है। ये कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक जगत में वियोग में इतनी तीव्र याददाश्त बनी रहती है जो भगवान के उपस्थित होने के बराबर है। वियोग में भगवान की उपस्थिति यानी कि भगवान की प्रेजेंस ज्यादा महसूस होती है वियोग में। जब साथ हैं तो एक प्रकार की हमें भावना होती है, हाँ है, हम सुरक्षित हैं, अपनी पास हैं, लेकिन हम चिपके थोड़े रहते हैं, चिपके नहीं रहते हैं। जब वियोग में इतना चिपके रहते हैं कि कभी अलगता का भाव पैदा ही नहीं होता, इतनी तीव्र भगवान की स्मृति बनी रहती है, उसे अनुस्मृति कहते हैं। अनुस्मृति यानी कि स्मृति थोड़ी देर की नहीं होती, उसके स्मृति के बाद स्मृति के बाद स्मृति के बाद स्मृति स्मृति चालू रहती है। स्मृति यानी रिमेम्बरेंस, है ना? तो अनुस्मृति जिसमें स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस आती है, अनुस्मृति वो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस कर सकता। जिसमें स्पॉन्टेनियस रिमेम्बरेंस नहीं है then he cannot do spontaneous devotional service. हमारी शक्ति स्पॉन्टेनियटी यानी कि अविरत बहती नहीं, थोड़ा थोड़ी डिवोशनल सर्विस करते थक जाते हैं। कोई कहता है कि ओ ए भैया अपने भगवान के रसोई घर में थोड़े बर्तन बाकी है, जरा साफ कर लो। अरे अभी तो साफ करके आया है, बहानेबाजी निकालते हैं, बात हो गई। स्पॉन्टेनिटी नहीं है। वी थिंक अवर फिजिकल लिमिटेशन डिक्टेट्स अवर डिवोशनल सर्विस। जब विरह में स्पॉन्टेनिटी अनुस्मृति इतनी तीव्र होती है, एक्यूट फीलिंग, जो साथ में जीते जी नहीं मिलती है। कभी दो व्यक्ति इतने नजदीक एक दूसरे के यदि आ जाएं तो एक दूसरे को चुभने लगते हैं। हटियो, लीव मी अलोन करेंगे। आई नो यू लव मी बट लीव मी अलोन। We can't tolerate the closeness. Because physical proximity, चाहे नजदीक हो लेकिन बहुत दूरी हो सकती है तीव्रता में, क्योंकि physical limitation, physical energy जो है that is not spontaneous. एक दूसरे को भाव को जानने के लिए भी हमें परेशानी आती है। हम सोचते हैं कभी रुट जाएगी तो सारा दिन मेरा बेकार जाएगा, यूं करके हम मनमानी किसी को करने देते हैं नहीं। लेकिन विरह की वेदना इतनी तीव्र होती है कि ये तीव्रता में एक्यूट दिखाई देता हो पेन जैसा, पर प्लेजर में क्यों है? बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म इन द क्वालिटी, इट इज यूनिफॉर्म विथ द इंटरनल पोटेंसी, भगवान की अंतरंग शक्ति के साथ तालमेल रखती है विरह की वेदना। अनुस्मृति में भगवान की याद इतनी तीव्रता से आती है कि भगवान का व्यक्तित्व जो मैनिफेस्टेड हुआ है वो भी थक जाता है। उदाहरण दे, गोपियों के साथ रास खेलते खेलते भगवान अदृश्य हो जाते हैं, राधा रानी को लेकर छुप जाते हैं, सारी गोपियां विह्वल हो जाती है और पागल की तरह ढूंढने लगती है, पागल की तरह, क्योंकि भगवान ने हरेक के साथ अपना विस्तार करके रास खेला था। इसलिए गोपियों में ये भाव आ गया, ओ भगवान मेरे अकेले के ही साथ, ओ मैं कितनी सद्भागी हूं, आई मस्ट बी वेरी डियर टू हिम एंड आई एम अलोन इज वेरी डियर टू। भगवान को वो मर्यादित बना देती है, यानी कि भगवान के मन में मर्यादा नहीं है, वो मर्यादा लेकर नहीं आए हैं। एक गोपी अपनी मर्यादा में यदि भगवान को बांध देना चाहती है तो भगवान के कह रहे मार गोली, हटियो यहां से, हु आर यू टू बाइंड मी, सो ही डिसअपीयर्स। लेकिन अभी देखो भगवान का वो प्रेम में भंग नहीं करते हैं, प्रेम को और बढ़ाना चाहते हैं और गोपियों की और विरबलता पैदा करना चाहते हैं। सचमुच जिन गोपियों ने ये सारी गोपियों ने भगवान के लिए इतना सर्वस्व त्याग कर दिया है कि इनके जैसे ही कोई सेवा नहीं कर। The highest रम्या काचिद उपासना व्रज वधूर वर्ग जा कल्पिता। यदि उपासना करनी है तो ऐसी तीव्रता से करो जो गोपियों ने करी। तो जब इतनी तीव्रता विरह में इन्होंने लाई, भगवान का व्यक्तित्व परेशान होने लगा। उन्होंने सोचा कि चलो जरा और परीक्षा करूं, वैसे छुप तो गया हूं, बाहर निकलूंगा तो डांटेंगी, सही, लेकिन देखो तो सही कहां तक करते। तो भगवान छुप गए एक कदम पेड़ की उसमें, कदम में यदि बड़ा ये खोखला होता है तो उसमें छुप जाते हैं, कदम इतना बड़ा होता है, वो पेड़ में छुप जाते हैं। तो गोपियां हर एक लता पता को पूछती है तीव्र विरह की वेदना में, क्या हमारे श्याम सुंदर को देखा, कहां है, आप बताओ आप बताओ, इतनी विवलता से पूछ रही है। तो भगवान ने सोचा कि चलो मैं चतुर्भुज नारायण के रूप में इनको दर्शन दू और पूछू कि किसे ढूंढ रही हो, क्या है। तब तो वो पेड़ की बखोल में से बाहर निकले कि हे सखिया कहां जा रही है, इतनी पागल क्यों हो रही है, किसको ढूंढ रही है। तो क्या कि ओ विष्णु जी, आप वैकुंठ छोड़कर यहां कैसे भूल फटके पड़े हैं, क्या आपकी लक्ष्मी भी खो गई क्या, यहां क्यों आए हो, जाओ जाओ यहां किसी का आपका कोई काम नहीं है, हटियो। यानी कि तिरस्कार कर दिया विष्णु भगवान का और चली हमारे मार्ग में, बताओ तुम क्या जानो। तो सचमुच ये चतुर्भुज विष्णु भगवान को इतना गुस्सा आया, एक लात जोर से कदम के पेड़ को मारी और कदम टेढ़ा हो गए। तो पेठा गांव एठा कदम कहते हैं, तो पेठा गांव करीबन 8 किलोमीटर गोवर्धन से दूर है, सौख रास्ते पर आता है। तो वहां कदम का पेड़ है और चतुर्भुज नारायण का विग्रह की स्थापना है, गिरिराज जी वहां है, यानी कि करीबन 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी गिरिराज जी निकलते हैं, इतना विस्तार था। ऐठ मारना यानी लात मारना, पेठा गाओ ऐठा कदम। अब चतुर्भुज नारायण को भी ये विरह वेदना का ख्याल नहीं आता कि इतनी तीव्रता में वो द्विभुज स्वरूप वाले श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। ये चतुर्भुज का क्या काम है, यहां कोई रिश्ता नहीं नाता है बीच में, यहां से वैकुंठ छोड़ के क्यों आया, जाओ आप क्या जाना। तो ये भगवान के व्यक्तित्व को भी, यानी कि भगवान की पर्सनालिटी को भी ये थोड़ी घबराहट होती है। इतनी तीव्रता भगवान श्याम सुंदर से जब विरह वेदना में होती है तब भगवान हार जाते हैं और भगवान स्वीकारते हैं कि मैं हारा, आपका उपकार का बदला मैं कैसे छुपाऊंगा, मैं चुप नहीं पाऊंगा, न पा रहे हम, मेरे से पार नहीं होता है। पार पाना यानी कि मैं कीमत चुका सकूं या मैं समझ सकूं, ये मेरे हद की बाहर है। भगवान स्वीकारते हैं वहां अपनी कि आपके विरह के आंसू ही आपकी विरासत बनी रहो, दिस इज मोस्ट प्रेशियस टीयर्स, टीयर्स आर मोस्ट प्रेशियस, टीयर्स ऑफ लव आर मोर प्रेशियस देन द पर्सनालिटी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अरे अभी अभी भगवान का ध्यान मत धरो, वर्क ना समाधि लेटर, सर्व हिम, समाधि बाद में, अभी नहीं, क्योंकि वी डू नॉट नो द टू इवेल्युएट द प्राइसलेस ज्वेल ऑफ द टीयर्स ऑफ लव। चैतन्य महाप्रभु ने वो सिखाया, उनकी अंत्य लीला में आप देखोगे ये कोई भावुकता नहीं है, ऐसी भावुकता जो देहात्म भान या भौतिक प्रकृति के संसर्ग से पैदा हुई सत्वरज तमोगुण वाली नहीं, यह आध्यात्मिक गुणों में समाधि की पराकाष्ठा में जो सात्विक भाव पैदा होते हैं ये प्रदर्शित होते। तो कहने का मतलब है रामचंद्र जी दुखी हुए, ये तो परम तत्व है। हाँ नहीं, अवश्य अपनी शक्ति को अपनी सेवा के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है। हाँ वो प्रेम की झलक बताता कि रामचंद्र जी में सीता के लिए कितना प्रेम है। हाँ इसलिए दुखी प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके प्रेम की कोई सीमा नहीं। दुखी प्रतीत होना और हम अपनी ये प्रापंच की बुद्धि यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि तत्वों से बनी हुई बुद्धि से हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, दिव्य बुद्धि होनी चाहिए, वो भगवान स्वयं देते हैं, उनके नियंत्रण में है। किनको देते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तेन मामुपयान्ति। भगवान इनको देते हैं जो सतत युक्त हैं, प्रीतिपूर्वकं भजतां, ऐसे भगवान की प्रेममयी सेवा में सतत जुड़े हुए, इनको ही पर्याप्त बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम मामुपयान्ति ते इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो देखो भगवान आते हैं जाते हैं, यदि छोड़ ही जाने वाले हैं तो भजने की क्या आवश्यकता है। कोई कहेगा कि भगवान कैसे हैं, देखो रास खिलाते हमें छल करके चले जाते हैं, ये तो छलिया है। ये छलिए की क्या आवश्यकता है, कोई सीधा काम तो करता नहीं है, खड़ा भी टेढ़ा काम भी टेढ़ा। भगवान टेढ़े हैं, त्रिभंग ललितम, तो इनको टेढ़ा कहते हैं, ये सीधा नहीं है। लेकिन वो टेढ़े हैं तो हम कितने टेढ़े होंगे, इनको टेढ़े बनने की क्या आवश्यकता हुई। त्रिभंग ललितम वो स्टाइल मारने की हमारे पास क्या आवश्यकता है, स्टाइल में खड़े हैं ना, कोई यूं करके खड़ा होता है, कोई और स्टाइल मार के फोटो खिंचवाता है, और भगवान कृष्ण त्रिभंग ललितम स्टाइल में फोटो खिंचवाते रहते हैं। एक ही स्टाइल इनकी पास है, दूसरी तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये त्रिभंग ललितम तो टेढ़ापन अपना दूर करने के लिए वो स्वयं टेढ़े बने हैं, अपना टेढ़ापन दूर करिए, इतनी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। कोई सीधा है तो इनके साथ सीधा व्यवहार करते, हम सीधे ही नहीं है, हम सीधे होते तो कभी मुश्किल ही आती, कभी नहीं आती। हम भगवान को समझने की भी सीधी समझ दे रहे फिर भी नहीं लेते, टेढ़े के टेढ़े बनना चाहते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक बातें यहां प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। तो सर्वत्र स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण पाया जाता है, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगले श्लोक में, जिससे हर व्यक्ति भयभीत रहता है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे नियंताओं ने भी ऐसी भावना पाई जाती है और उनके लिए भी ये भय के कारण है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है। शिव और पार्वती के विवाह के पूर्व देवताओं ने यह त्राटक रचा था कि हमें सेनापति चाहिए, तो जरा कामदेव को भेजो और शिव जी के तप को भंग करावे, और पार्वती को कहना बनी ठनी वहां पहुंच जावे। तब शिव जी डरते हैं कि ये जानबूझकर हमें क्यों फंसाते हैं। वहां शिव जी का भय जो बताया जाता है तो सही है कि संसार में हमें क्यों फंसाने की ये चेष्टा करते हैं, क्योंकि पार्वती तो संसार की अधिष्ठात्री है। हाँ, मैं भगवान और माया के बीच में रूपांतरित शिव तत्व के रूप में आया हूं, फिर भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते, मुझे दूषित करना चाहते, इसलिए कामदेव पर इतनी क्रोध दृष्टि की उसको जलाकर खाक कर दिया। हाँ, तो बेवकूफ समझता है शिव जी क्या है, एक तीसरी आंख खोली गई साफ हो गए, ये भौतिक कामदेव। फिर भी देवताओं को राजी करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ है, सही। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सब आध्यात्मिक जगत से प्रेम तथा आनंद का अनुभव इस जगत में विकृत प्रतिबिंब पड़ता है, तो वे बंधन के कारण बन जाते हैं। जब तक इस जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्री पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेगी, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय न होने से ऐसी वियोग की भावना दिव्य आनंद का कारण स्वरूपा बनती है। वास्तव में अनुभवों की विविधता होती है, किंतु दिव्य आनंद के समान गुण वाली होती है। ये सारा भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब बताया जाता है, यानी कि सच्चिदानंद गुण का जो आध्यात्मिक जगत है वो सत्व रज तमो गुण प्रतिबिंबित गुण है इसके। इसमें तीन गुण भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत के तीन गुण एक दूसरे से विरोधी यानी कि ओपोजिट है। जो सत गुण है तो भौतिक जगत में सत्व बना, सत यानी इटर्नल, उसका ओपोजिट सत्व अच्छा है लेकिन काम चलाओ, मीन्स टेम्पररी। इट्स अ गुड थिंग, गुडनेस कम्स फ्रॉम इटर्निटी, इटर्नल इज ऑलवेज गुड, देर इज नो पेन देर, सो इटर्नल गुडनेस इज नाउ बिकमिंग टेम्पररी गुडनेस। चित मीन्स नॉलेजिबिलिटी, द फुल नॉलेजिबिलिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहां रजोगुण मीन्स इट बिकम्स हाइपर एक्टिविटी, जो कुछ जानकारी है तो हमें कार्य में पलटती है। द नॉलेजिबिलिटी इज नाउ ट्रांसफॉर्म इंटू एक्टिव और हाइपर एक्टिविटी इन द मटीरियल वर्ल्ड एंड आनंद, आनंद का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, तम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस में तम तमोगुण में हुआ। सो सच्चिदानंद गुण का विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो है उसका विकृत प्रतिबिंब यानी कि कंप्लीटली ओपोजिट कैरेक्टरिस्टिक, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ शेडो। सो व्हाट वी रियलाइज दैट टू बी अ गुड पर्सन इज ऑल्सो नॉट गुड, टू बी अ गुड पर्सन विल नॉट लिबरेट यू और क्वालिफाई यू टू गो बैक होम बैक टू गॉड। दैट्स व्हाई कृष्ण इज वेरी क्लेवर एंड टेल्स अस दैट ही नेवर क्रिएट्स piety or impiety, it is the activity of or the rajogun, the activity of human being, whether it is in the mode of ignorance or mode of goodness. If it is done, the activity is performed in mode of goodness, then it brings a temporary value system that will promote you to swargaloka for a better enjoyment, Because activity is there. If it is done in the mode of ignorance, then it is going to steep you down in the hellish planets. So, jabki Bhagwan kehte hai ki I do not create this piety or impiety. I do not create. It's the human being, they create themselves, so they become a recipient to enjoy or suffer. Enjoy heavenly benefits or hellish suffering. So enjoyment and suffering, they are coming as their own manufactured thing. I do not create them. Why? When I come in the human-like form, I still retain my spirituality, my eternality, my full knowledgeability and full bliss. I don't have any necessity to work, but I perform in such a way that people will think that I am like them. So they will get an impetus to follow. But the results of such activity never bind me, because I am not attached to it. So if we know this technique by devotional service, namam karmani limpanti name karma phales praha itiyo mam abhijanati karma bhir apinabhyate, the works never bind me, because I have no attachment to the fruits of the work. I am doing with my simply pleasure potency. In complete knowledgeability, and my activities are eternal because I am eternal. That's Krishna's position. Right? And if people know this technique, that why the works are not binding, because I am not attached, if they become detached from the results of their work, then they will be also free. Itiyo mam abhijanati karma bhirapi na badyate. If people know me that way, then they will be also liberated from the reaction of the work. So, the divine qualities of the Supreme Lord, even though if He descends as an avatar, remains divine. But we never descended. We were forced to come according to our karmic reactions. Right? Therefore, it is imperative that we must become free with the torchlight of knowledge. And act in such a way that works will never bind us. We will be ever free. So, we have to understand with those three divine qualities, Sat, Chit, Anand, which is the configuration of the Supreme Lord. So, whatever His activities are also, they are confined into that realm, which is called internal potency. While we are confined into opposite, means Mahamaya, external potency. Right? Even though we are part and parcel of His internal potency, the choice is ours. By proper understanding and situating ourselves, then we will always be associating for getting those spiritual atmosphere, right? If we are getting into Maya, then we are to be blamed, not Krishna. So knowingly, if we keep on entangling ourselves into the activities of Maya, then we will never make progress. Rather, we will regress. Our devotional service will stop. It will never be destroyed, but it will stop. We are supposed to create a desired atmosphere of spiritual value. We are supposed to, this is the movement for that. But if there is politics everywhere, there won't be proper atmosphere. Right? So we have to understand, and we will not be able to understand the intricate leelas, how Krishna or Ram is manifesting, and how Sukadeva Goswami is making us understand, and how Srila Prabhupada is giving the purports, which are very easily applicable in our life. So this is an important process. We have to give the highest esteem, the value system of the spiritual point. So this is given to the ideal family life. We have to understand that in the ideal family life, the first and foremost thing that we have to understand the intricate leela of the Lord and understand. Then, to sustain that, we should always invite the sadhus in our home and associate for that purpose. So we will be nurtured. This is the purpose. We have to hear from sadhus constantly. Knowingly we are in the householder life, then we will be support. If you see in Canto 7, when Yudhishthira Maharaj has been asking Narad Muni about the systems of social order and the char varna char ashram ityadi sab Narad Muni sikhate hain, uske baad adarsh grahastha jivan mein ye kai mudde unhone bataye hain. The first and foremost duty of the householder is to be, subservient to the desire of the Supreme Personality of Godhead. And for that purpose, they have to adopt a lifestyle that will always keep them intact for this purpose. That is, by inviting sadhus, the devotees, and discussing with them the characteristic of the transcendental nature, then they will be reminded all the time. Aisa nahi ki kya hame jeene nahi dete, har baar dekho sadhu aate hain, hame itna khana pakana aata hai to pareshani ki pareshani khada karta hai, are isko ye chahiye wo chahiye, hame to sunne ka mauka hi nahi milta hai, hame piche cook karte rehna padta hai, hame to sunne ka mauka hi nahi milta hai. कहां गए सभी, सुनते ही नहीं. So यही है, but this is the most foremost requirement for the householder life that has been given. Then just to perform that, then all the activities are described which are centered around that point. And that also becomes the ideal householder, character. So, this is the that. Sita dvara prithvi mein pravesh karne ke baad Bhagwan Ramchandra ji ne purna brahmacharya ka palan kiya aur 13,000 varsho tak wo anavrat agnihotra yagna karte rahe. 13,000 years he performed, this Agnihotra Yajna. Yajna pura karne ke baad Dandakaranya mein rehte huye Bhagwan Ramchandra ji jinke charano kamalo mein kabhi kabhi kaante gad jate the, unhe un logo ke hradayo mein rakh diya jinka nirantar chintan karte hain. Bhagwan ke charan kamal का ध्यान योगियों करते थे. ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनः. तो योगियों अपने हृदय में ही भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हैं. सही. तो रामचंद्र जी ने के जिनके चरण कमलों में कभी कभी कांटे भी जड़ जाते थे, उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं. तत्पश्चात वे ब्रह्मज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ में प्रविष्ट हुए हैं. ब्रह्मज्योति से परे, ब्रह्मज्योति से परे वैकुंठ धाम आता है. ब्रह्म ज्योति तो निर्गुण निराकार है, लेकिन रामचंद्र निर्गुण निराकार नहीं है ये पुरावा प्रमाण मिलता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति से परे वैकुंठ धाम में उनका प्रवेश हो रहा है, वो अपने निज धाम में जा रहे हैं। ब्रह्म ज्योति की प्रशंसा ज्ञानी या एकेश्वरवादी दार्शनिक करते हैं, जो मुक्ति के लिए उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। वह भगवान के शरीर की किरणों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, दिव्य ज्योति जितने निकलती है, तो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोष्टि शशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अशेष अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त हैं, उनके दिव्य स्वरूप का प्रखर तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है, और जो 100 करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों के रूप में दृश्य होता है। ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत की शुरुआत है और इसके परे वैकुंठ लोक है। दूसरे शब्द में तो ब्रह्म ज्योति वैकुंठ के बाहर रहती है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य से बाहर रहता है। सूर्य में प्रवेश करने के लिए सूर्य के प्रकाश को पार करना होता है। इसी प्रकार जब भगवान या उसके भक्त वैकुंठ लोक में जाते हैं तो उन्हें ब्रह्म ज्योति पार करके जाना होता है। यानी कि भगवान के बारे में पूर्ण जो जानकारी होती है, जो ज्ञान मार्ग से होती है, तो भक्ति करने से ज्ञान तो अवश्य प्राप्त होता ही है, इसलिए वो ब्रह्म ज्योति को पार करके ही वैकुंठ जा सकते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु ज्ञानम च वैराग्यम च दहेतुकम। अहेतुकी ज्ञान और वैराग्य भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होता है, वो निर्विवाद सत्य है, उसे उसके लिए पढ़ने के लिए हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान की भक्ति हमारी सही है तो उसमें अहेतुकी ज्ञान और वैराग्य दो प्राप्त होते हैं। भक्ति के दो बेटे हैं। अरे बेटा पहला आता है कि माँ पहली आती है?
माँ
आती है। तो माँ के बेटे भक्ति माँ है और ज्ञान और वैराग्य उनके दो बेटे हैं। सही। तो ज्ञान और वैराग्य पैदा होना ही चाहिए जो भक्ति करते हो तो।
ज्ञान और वैराग्य
अहैतुकी ज्ञान और वैराग्य यदि पैदा नहीं होता तो भक्ति कच्ची। इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर देम। आप आदर्श गृहस्थ आश्रम में हैं सभी, लेकिन अब वो आदर्शों का पालन करने, हम तो सोचते थे कि यहाँ वो सेमिनार दे देते आदर्श गृहस्थ आश्रम के लिए। Yeah, but then I tried to arrange and some things were not going through. हम कितने सालों से, 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं। लातुका में तो पहले भी हमने कोशिश की थी, नहीं की थी ऐसे थोड़ी। जब हम लगातार 8-8 दिन सुबह में लगा देते हैं, तो यदि आप लोग भी बुलाओ तो ऐसे कर सकते हैं, क्यों नहीं।
डेफिनेटली
कम एंड गेट टुगेदर एंड गेट गोइंग। व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू?
पॉलिटिक्स।